cocaína.
Sos uguaya, cana.
Pues, ¿cuch tú caíe, na?
¿Cuch yo te chao?
Pide, ¿cuch no?
¿Cuch caíe, na? ¿Cuch te acho?
¿Cuch gal caro, na, ji?
¿Lek hote uaya? ¿O cuch te acho?
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, इंजीनियर कर्टिस पाइनम, प्रोड्यूसर हमारे अरसलान शरीफ हैं। मेहमान हमारे यकीनन आप सब के दिल को बड़ा भाएंगे और आप सब उनको बराए रास्त यानी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़रूर जानते हैं, तो एक झलक सुनते हैं उनकी आवाज़ की, देखें आप पहचानते हैं कि नहीं।
ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत, खूबसूरत लगेगी लोगों को, फिल्म मज़ा आएगा। हाय, आई अनीस बज़मी। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, नो एंट्री है, वेलकम है, सेंग इज़ किंग है। एक बार मैं फिर रेडी हूँ आप लोगों का वेलकम बैक करने के लिए।
तो सामीन, वैसे तो राज अफशा ही हो गया कि अनीस साहब ने शुरू में कह दिया कि मैं अनीस बज़मी हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। अनीस साहब
जी।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और हमें पता है कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं आपको जानते होंगे, क्योंकि फिल्मों के शौकीन लोग बहुत हैं हमारे यहाँ, और फेसबुक पे भी आपके लिए बहुत से सवाल आते हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं पहले आपसे। आपका जो मैंने ये शुरू में एक क्लिप दिया था, ये आपका एक इंटरव्यू था आपका। मैं जो भी इंटरव्यू मैंने सुना या देखा, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप एक बड़े मतलब काने आदमी हैं। आप में एक होती है ना भागदौड़, बॉम्बे की ज़िंदगी में हम समझते हैं कि आदमी भागता दौड़ता रहता है, तो आप में ऐसा लगता है कि ये बात नहीं है। फिल्में भी आप ये नहीं चाहते कि एक साथ बहुत सी बनाएं, कहानियाँ भी बहुत सी लिखें, तो ये ठहराव और क़नात मुझे हमेशा यकीन होता है कि आदमी के ख़ानदान से आता है। तो शुरू करते हैं, कहाँ से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ?
एक्चुअली ये सारी जो देन मैं कहूँगा ये मेरे वालिद साहब की हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं उनका नाम अब्दुल हमीद नहरंग बज़मी शायर हैं, शायर थे। तो शुरू से जब से मैं शायद पांचवी या छठी जमात में था, तो उनके साथ ही उनकी शायरी जो है वो लिखता रहता था उर्दू में, तभी से वहाँ से शौक आ गया। तो एक आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब कम उम्र में जो एक मेरी शख्सियत थी वो ये है कि सारे बड़े बड़े शायरों जो शायर हैं उनके बीच मैं रहा हूँ। तो एक बचपना जो है वो बहुत ज़्यादा बचपन में भी नहीं था मुझे।
अच्छा, वो कैसे?
ताकि ये सारे जो बड़े जितने शायर हैं सारे बड़ी उम्र के थे, 40 साल 45 साल 50 साल, और अबाउट 13 और 14 तब से मैं इनके बीच बैठता रहा हूँ मेरे वालिद साहब की वजह से। तो मुझे शायरी का शौक जो है बहुत पहले से शुरू हो गया। तो जब मैं 8th या 9th में था तो मैंने सब दीवान जो है दीवान गालिब और इकबाल और मीर और जोश ये सब मैंने 8वीं या 9वीं जमात में जब मैं था तब मैंने पढ़ लिए थे।
अच्छा, मैं अनीस साहब बल्कि आप हैं खुशकिस्मती से हमारे साथ, मैं एक बात पूछूंगी। मैं जब भी, और ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि जो गुजराती बोलने वाली हमारे भाई बहन हैं, मैंने देखा कि उनमें बड़ा उर्दू शायरी के लिए एक मोहब्बत, उसका शौक, फिर उनको ड्रामे का, आर्ट्स का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो ये ज़बान से मोहब्बत ये एक आम चीज़ है गुजरात में, इसकी क्या वजह है थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएँ?
मुझे इस बारे में ज़्यादा ईमानदार से बताऊं कि ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन हाँ मैं खुद गुजराती हूँ, मेरे वालिद जो हैं वो गुजराती, गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरा तो जो उर्दू से और शायरी से जो शौक शुरू हुआ इसलिए कि मैंने उर्दू में ही तालीम हासिल की, और बिकॉज ऑफ माई फादर मेरे अब्बा की वजह से शायरी से बचपन से ही मेरा एक ताल्लुक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे शौक होता गया। लेकिन यह सही बात है कि जब मैं गुजरात जाता हूँ तो वहाँ पे काफी लोग ऐसे मुझे मिले जिन्हें इस ज़बान से एक अजीब सा लगाव, एक अजीब सा प्यार है, और वो देखकर और वो सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
और मैं देखती हूँ ना कि जो रियलिटी शोज होते हैं इसमें जो म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं, तो जो गुजरात से बच्चे आते हैं वो ऐसी ऐसी मुश्किल गजलें इतने सही तलफ्फुज के साथ, और राजस्थान इन दो जगहों से, कि मुझे हैरत होती है कि इन बच्चों ने, जबकि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इंडिया में बहुत से लफ्ज अब जो नई जनरेशन है नहीं सही तरह अदा कर सकती है, जैसे जीम, जीरा, जीरा जे नहीं कहते, जी जीम कहते हैं, मगर इन दोनों इलाकों के बच्चे मैं देखती हूँ बहुत अच्छी तरह से गजलें वो जो हैं पढ़ते हैं और गाते हैं। अच्छा, तो आपने, तो आपके कोई बहन भाई नहीं थे या आप इकलौते बच्चे हैं?
नहीं, मेरे मेरे नहीं नहीं मेरे तो अपने दो बहनें हैं और दो और भाई हैं।
अच्छा।
लेकिन ये कह सकते हैं कि आप पांचों में से जो ज्यादा शौक शायरी का रहा और फिल्मों के तरफ जो मैं गया, वो सिर्फ मेरे घर में, मेरे पूरे खानदान में मैं अकेला ही हूँ।
अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि क्यों आप ज्यादातर बड़ों में उठते बैठते रहे, तो ये आपकी ज़ाती जो दिलचस्पी थी शायरी में इसकी वजह से हुआ, घर में वरना बच्चे मौजूद थे जिनके साथ आप वक्त गुजार सकते थे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने एक प्रोग्राम के शरीक का, जहां जेब आवान उनका नाम है, कराची से हैं और बड़े मद्दा हैं आपके, ज़बरदस्त फ़ैन हैं। उनके बारे में हम ज़्यादा बात आज नहीं करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह आप हमारे दूसरे प्रोग्राम में आ रहे हैं मेरी कहानी में, जो जहां जेब आवान की कहानी हम उसमें सुनेंगे और कुछ आपसे भी सुनेंगे। तो सिर्फ मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये टेलीफोन नंबर हमें दिया।
नहीं, मैं उनका खुद भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जहाँ जेब का, जिसकी वजह से आपसे आज गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला। बहुत ही प्यारा बच्चा है और वो जब आया तो मुझे ऐसा लगा, जब पाकिस्तान की बातें उसने और वहाँ के सारे लोगों की बातें भी बताई, मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैंने बहुत उसको दुआएं दी, बहुत प्यार दिया और इंशाल्लाह अपनी आने वाली फिल्मों में उन्हें काम भी देना चाहूंगा।
लीजिए, आपने तो राजी अफशा कर दिया। मैं सोच रही थी ये हम पर्दा हटाएंगे इस रास्ते से मेरी कहानी, लेकिन कोई बात नहीं,
सर उसपे
और बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो जहाँ से आपको, इसलिए हम आज प्रोग्राम में नहीं ले रहे, उनको इंशाल्लाह हम जुमेरात के रोज देंगे। तो आपने अब्दुल हमीद बज़मी साहब की शायरी का जिक्र किया, और कुछ याद है आपको या मैं फरमाइश ना करूँ एक आध शेर की?
नहीं, मेरे वालिद साहब ने तो काफी गजलें और नज़में और सब लिखी, तो अभी फिलहाल मतलब ये है कि जैसे मैं एक उनका एक ये कह सकता हूँ कि एक चीज दो चार शेर है वो आपको मैं सुना सकता हूँ कि उन्होंने एक उनवान लिखा था रखासा, तो उसपे उन्होंने कहा था कि प्यार समझे न कोई प्यार का बंधन समझे, प्यार समझे न कोई प्यार का बंधन समझे, नाजो अंदाज ही को रिस्क का साधन समझे।
वाह वाह वाह।
और हमने टीका भी लगाया तो सवरने के लिए, सच है सिंदूर की कीमत तो सुहागन समझे।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो मैं
और
जी जी जी, जी प्लीज इरशाद
जी। संगे दहलीजे दुकान देख कर पहरो रोए, आज हम मानिए घर अजमत आंगन समझे।
वाह वाह वाह
जी।
और कुछ
नहीं, बस ये आपको मैंने एक मतलब
नमूने के तौर
कि ये इस तरह के अशार कहते थे, और वाली साहब जो है मेरे बड़े जबरदस्त शायर थे।
अच्छा।
बहुत से नज़्में लिखी उन्होंने।
अच्छा, मैं आपकी फिल्में मैंने भी बहुत सी देखी हैं बड़े शौक से
जी,
और आपकी फिल्मों के बड़े पॉपुलर गाने में एक गाना सुनाने जाती हूँ, उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले सुनते हैं गाना
प्लीज।
महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे।
ये गाना मैंने जो सुनवाया आपको, मैं ये पूछना चाहती थी, मुझे मालूम है ये बहुत ही पॉपुलर गाना है, बच्चे और नौजवान गाते फिरते थे इसको, लेकिन आपके वालिद की जनरेशन जो है वो इन गानों के लिए क्या सोचती है और क्या कहती है आपके
उनके लिए तो ये लगी होगी कि अनीस की फिल्मों में इस तरह के गाने कैसे आ सकते हैं, ये अब्दुल नैरंग बज़मी के बेटे हैं। मुझे ये लगता है कि मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में भी चले और वो लंदन में भी चले, चाइना में भी चले, लुधियाना में भी चले, तो मुझे एक बहुत ही वसी ऑडियंस के बारे में सोचना पड़ता है। तो आज जो यूथ है, यूथ की और जो आज की जो जनरेशन है वो इस तरह के गाने बहुत पसंद करती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत आसान जबान के अंदर इसमें भी शायरी थी, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट था इस गाने में
जी।
तो
जी।
मुझे ये गाने बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया, शूट किया और लोगों को बहुत पसंद आया। ये फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई है इसमें इस गाने का भी बहुत बड़ा हिस्सा था।
बिल्कुल सही आपने कहा, ये तो मैंने पहले कहा कि ये बहुत पसंदीदा गाना है, लेकिन जाहिर है कि जनरेशन मुख्तलिफ हैं और उनके शौक भी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तो आपके जो गुरु हैं फिल्म की दुनिया में वो बहुत बड़े फनकार हैं और डायरेक्टर भी बहुत बड़े हैं, राज कपूर साहब, आपने उनके साथ अपने काम का आगाज किया, तो वहीं से हम शुरू करते हैं, तो कुछ बताइए।
वहीं सीखा था मैंने काम, मैं बहुत ही मतलब यंग था उस वक्त, आई थिंक आई वॉज 16 मेरी एज थी, और मुझे ये इतना बड़ा मौका मिला उनके साथ चार साल गुजारने का। मैंने एक फिल्म थी प्रेम रोग, उसमें उनको असिस्ट किया था, और मुझे लगता है कि आज मैं जिस जगह भी पहुंचा हूं उसमें उनकी दुआओं का और उनके साथ रहने का बहुत असर है। इसलिए कि मुझे लगता है कि आप 5 साल कुछ पढ़ते रहिए और 5 दिन किसी उस्ताद के साथ रहिए, वो एक ही यानी कि भी थोड़ा बहुत सीखा है, मुझे लगता है उसका मैं सारा जो गहरा जो है वो देना चाहता हूँ राज साहब को। राज साहब के साथ रहने की वजह से मुझे समझ में आया कि ये फिल्म क्या होती है, इसे कैसे बचाना चाहिए, और उनका जो पैशन था वो मुझ में कहीं बहुत ही चाहिए, लेकिन वो जो पैशन है वो उनकी वजह से आया।
अच्छा, तो कोई ऐसी बात जो उनसे आपने सीखी और जो आज तक आप उस पर अमल कर रहे हैं राज कपूर साहब की डायरेक्शन
का, उनका मैंने देखा कि काम का जो अंदाज था, वो जब फिल्म बनाते थे तो वो मुझे लगता है कि फिल्म जीते थे, वो उठना बैठना सोना जागना खाना वो हर चीज वक्त वो सिर्फ फिल्म का सोचते रहते थे, और इसीलिए इतनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई। और यही जो मेहनत है, देखिए काबिले जो है वो ऊपर वाला देता है, लेकिन मेहनत जो है वो आपको करनी होती है। तो जो भी ऊपर वाले ने मुझे काबिलियत दी तो मेरे एक राइटिंग दी थी मेरे वालिद साहब की वजह से, मैंने बहुत शायरों को पढ़ा भी, तो मुझे एक राइटिंग का शौक भी था, तो मैंने राइटिंग भी बहुत की, लेकिन डायरेक्शन है मैंने उनसे सीखी, और जो एक पैशन है और जो ईमानदारी से मेहनत और पूरी लगन से काम करना है वो आज तक जो मैं हर फिल्म में करता हूँ वो मुझे लगता है मैंने राज साहब से सीखा।
मुझे जो आपकी फिल्मों में एक बात बहुत ही अच्छी लगती है ना, मुझे काफ़ी नापसंद है मार धाड़ से पुर फिल्में, बहुत बुरी लगती है मुझे, लेकिन आपकी जो मैं फिल्म देखती हूँ ना उसमें मार धाड़ भी है, डॉन भी चले आ रहे हैं, मगर ऐसे मस्खरे किस्म के गुंडे हैं आपके सारे, मतलब मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, और मैं सोचती हूँ कि मतलब ये एक हमें एक ज़ाहिर है ये रियलिटी है दुनिया में क्राइम्स और सारी ये जराइम की दुनिया, तो एक हकीकत तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। एक डायलॉग सुनते हैं हम आपकी फिल्म वेलकम बैक से गालबन है, उससे मुझे मैं बताऊंगी आपको कि मुझे बहुत ही पसंद आया।
ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे।
मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और
बस, 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 बस हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा।
मैंने तो सोचा कि दो दो गुड न्यूज मैं आपको दूंगा, तो आप मेरी
तो ये इस तरह के जो आपके डायलॉग हैं, और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि आपकी एक टीम है, कुछ आर्टिस्ट हैं जो हमेशा आपकी मुख्तलिफ फिल्मों में मुझे नज़र आते हैं, तो ये एक नेचुरल भी है, ये हमारे रेडियो हो या टेलीविज़न हो, मीडिया के हमेशा एक टीम बन जाती है जिनका एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा गुजारा होता है, तो कौन से खास वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप हमेशा फिल्म बनाने चाहते हैं?
मतलब ये जो अपने जैसे नाना पाटेकर हैं, अनिल कपूर साहब हैं, अक्षय हैं, सलमान भाई हैं, अजय देवगन हैं, और इनके साथ मैंने काफी काम किया, और जो वेलकम में जो पीछे नाना जी और रानी जी के साथ जो लोग खड़े हैं, मुश्ताक और अपना भरत और हमारा ये क्या नाम ईरानी, ये सारे जो लोग हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनको इतना एतमाद भी मुझ पर, इसलिए कि उस वक्त जब मैं फिल्म शुरू किया था मैंने रोल खास नहीं थे, बट उनको ये एक एहसास था कि नहीं अनिल भाई बहुत प्यार करते हैं और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ये करेंगे, उस उम्मीद पे उन्होंने काम करना शुरू किया। हालांकि ये इतने अच्छे खुद एक्टर्स हैं कि इन्हें काफी फिल्मों में बड़े बड़े रोल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी वजह से कि ठीक है भाई हम लोग पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन अनित भाई ये फिल्म में हम काम करेंगे क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करवाएंगे। और देखिए कि वो उनका प्यार और वो एक दोस्ती होती है और एक विश्वास होता है, जब मैं लिखता गया तो इतने खूबसूरत इन लोगों के रोल हुए कि मुश्ताक भाई आज जहां भी जाते हैं तो उनको ये डायलॉग बिना बोले लोग तो छोड़ते ही नहीं है कि मेरी एक टांग जो नकली है। तो इस तरह का है कि ये एक दोस्ती हो जाती है, एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, और जिनके साथ आपने काफी काम किया है वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ इन सारे लोगों के साथ काम करना।
अच्छा, और मजे की बात ये है कि जब आपने आगाज किया तो आपने एक्टिंग से आगाज किया अपनी फिल्मी दुनिया का। मैंने गाना निकाला है आपके बचपन का और मैं बड़े देखने की कोशिश करती रही। वैसे मैं ये एक आपको कॉम्प्लीमेंट पेश कर दूं कि आप एक अब भी बड़े हैंडसम आदमी हैं और आपको फिल्मों में किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उसमें इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे थे कि मुझे पता नहीं लग सका। तो जरा सब गाना सुनते हैं फिर मुझे बताइए कि इनसे कौन से बच्चे जो हैं वो आप हैं।
मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, आई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान, अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार,
तो इसमें आपका कौन से आप हैं, ताकि हमारे सुनने वाले अगर देखना चाहें आपको इस गाने के बीच में तो देख सकें कि आप कौन
जो
से।
जो गाना है मैंने बरसों बाद सुना और मुझे अपने ये हो गया कुछ 35-40 साल या उससे भी ज्यादा वक्त हो गया होगा, तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। मैंने बचपन में एक दो फिल्मों में काम किया था, एक फिल्म थी किताब गुलजार भाई की, एक फिल्म नसीब फिल्म थी महेंद्र साई साहब की, उसमें मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब का बचपन का रोल अदा किया था। तो वो एक्टिंग जो है बस ये है कि इत्तेफाकन एक आप कह सकते हैं कि मेरा कोई खास पैशन और मेरा कोई खास शौक नहीं था, बट मैंने शुरू किया था काम करना इसलिए मुझे इसी लाइन में आना था। कुछ समझ थी नहीं और कोई आगे पीछे नहीं था, काफी काम किया एज असिस्टेंट एडिटर, फिर मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया, फिर मैंने साउंड रिकॉर्डिंग में काम किया। तो इस तरह के छोटे छोटे काम मैंने एक साल, डेढ़ साल, दो साल, एक साल, डेढ़ साल ऐसे काफी करते गया। फिर मैंने असिस्टेंट राइटर का काम किया, देन असिस्टेंट डायरेक्टर बना। तो मैंने काफी काम करने के बाद मेरे ख्याल से जब मेरी एज रही होगी 16-17 साल, उस वक्त मैंने अपना जहन बनाया कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है और शायद मैं ये डायरेक्शन बहुत अच्छी कर सकता हूँ।
अच्छा, ये जो हमने गाना लिया था ये गुलजार साहब की फिल्म थी किताब, तो कैसे ये रोल कैसे मिला आपको?
एक्चुअली क्या है कि जो मेरा एक छोटा भाई था उसका नाम है रईस, वो बड़ा ही खूबसूरत बच्चा था, तो मुझे लगता था कि ये बच्चे को जो है फिल्मों में काम करना चाहिए। तो उसकी तस्वीर लेके मैं जो है काफी लोगों से मिलता था, और एक बार जब गुलजार भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अनीस ये तो बच्चा बहुत छोटा है, तुम करोगे? मैंने कहा कि ठीक है। तो बस ये आप समझिए कि ये किस्मत में लिखा होगा, अल्लाह ने कुछ किया होगा और मेरी तकदीर में होगा, एक डेस्टिनी होगी कि मैंने वो काम शुरू किया और धीरे 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 मेरा शौक बढ़ता गया एक लाइन में, और फिर काफी सालों बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं मैं ये शायद फिल्म लाइन में डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ।
तो
और फिर डायरेक्टर बनने के लिए मैंने काफी फिल्में लिखी एज ए राइटर, तो मैंने आज तक तकरीबन 50-55 फिल्में लिखी हैं। तो वो फिर मैं फिल्में लिखता गया ताकि मैंने बोला एक थोड़ा नाम हो जाए, ताकि लोग जो है डायरेक्टर को मतलब मुझे सीरियसली लें और डायरेक्शन का मौका दें। तो वो मैंने कहा सोचा था कि मैं 4-5 फिल्में लिख के फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो चारों पांच बिगनिंग की वो इतनी बड़ी हिट हो गई, वो आंखें थी, वो शोला शबनम, बोल राधा बोल, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना अफताना अफताना अफता, सिलसिला जो मैंने सोचा था 4-5 फिल्मों तक महदूद रखूंगा, वो सिलसिला शुरू होता गया और मैं 25-30 फिल्में लिखता चला गया, उसके बाद देन आई स्टार्टेड डायरेक्शन।
मुझे ये सोच के मैं भी मुस्कुरा रही थी कि अनीस जो हैं जेब में लिए फिर रहे थे भाई की तस्वीर, खूबसूरत बच्चे की, मगर आप भी बहुत खूबसूरत बच्चे होंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है।
मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, इसीलिए मैं कैमरे के पीछे आ गया कि भाई चलो मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं काम जो है, मुझे लगता है डायरेक्शन का काम जो है और राइटिंग का, ये बड़ा खूबसूरत काम है, इसलिए कि कहते हैं कि जो अगर आपको एक फिल्म को बहुत अच्छी और खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए जो तीन चीजों की अशद जरूरत है वो नंबर 1 है स्क्रिप्ट, नंबर 2 है स्क्रिप्ट और नंबर 3 है स्क्रिप्ट। तो मुझे लगता है कि मैं राइटर बहुत अच्छा हूँ, मैं स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं स्टोरी बहुत अच्छी लिखता हूँ, मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखता हूँ। तो मैंने कहा कि जिस काम में मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे बहुत मजा देता है, ये जो काम मुझे बोझ नहीं लगता है और मुझे लगता है कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को फिर उस तरफ लेके चला गया।
अच्छा, वैसे तो ये एक आइडियल सूरत हाल है कि आप कहानी अपनी पसंद की कहानी लिखें, अपने पसंद के डायलॉग लिखें, हर चीज़ आपको कोई ज़रूरत ही नहीं काट छांट की, लेकिन मुश्किल भी बहुत है, तो किस तरह आप कोप करते हैं एक महदूद वक्त में जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, कितना अर्सा लगता है तमाम चीज़ों को साथ करने?
मुझे लगता है कि फिल्म में जो फिल्में हम बनाते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो राइटिंग, क्योंकि जब इंसान अकेले कमरे में तन्हा कोरे कागज को लेके बैठा होता है तो उससे ज्यादा भयानक, उससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं होती। ये ऐसा होता है कि आप एक टनल में जा रहे हैं अंधेरे में और आपको ये पता नहीं कि ये टनल का दूसरा हिस्सा कहाँ है, तो वो नेचुरली आदमी अंदर जाने से डरता है। तो वो हर फिल्म लिखने के वक्त मुझे बहुत डर लगता है, आज भी, आज माशाल्लाह मैंने 50 फिल्में से ज्यादा लिखी है, लेकिन अभी भी अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो वो लिखने से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 50-55 फिल्में हैं जो लिखी है, ये शायद किसी और अनीस बज़मी ने लिखी है, ये बहुत मुश्किल होगा मुझे लिखना। तो मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत मुश्किल काम है और एक महदूद वक्त में भी करना होता है, इसलिए कि हम शायरों की तरह ये तो नहीं है कि भाई ऊपर से शेर नाजिल होगा तब कहेंगे, हमें प्रोड्यूसर के हिसाब से उन्होंने पैसे दिए हैं, एक्टरों ने डेट्स दिए हैं, तो हमारा मूड हो या नहीं हो हमको उसी वक्त में सब करना होता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मतलब मैंने ठीक से कर लिया है, कुछ लोगों का प्यार, कुछ जिम्मेदारी, कुछ ऊपर वाले का मतलब मेहरबानी, ये कहिए, ये सब कुछ मिला मुलो कर मैंने हमेशा वक्त पर अच्छी तरह से जो मेरी काबिलियत के हिसाब से बेहतर वह फिल्म बना सकता था वो मैंने बनाने की कोशिश की।
अच्छा, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, कुछ एक को हम लेते हैं हमारे साथ। जफर इकबाल लुड़का बिहाड़ी से। जी जफर इकबाल,
अस्सलाम वालेकुम बाजी साहब।
जी वालेकुम सलाम भाई।
वालेकुम सलाम जफर भाई, वालेकुम सलाम
जी। मोहतरम मेहमान साहब को मैं वेलकम करता हूँ, अलग से सलाम पेश करता हूँ जी इनको।
बहुत बहुत
तो गुजारिश है,
इनको तो वेलकम भी करें और वेलकम बैक भी करें फिर दोबारा से जब जब रात को आए तो।
अच्छा सर, गुजारिश है कि एक ऐसी फिल्म आप लिखें जी, मेरी रिक्वेस्ट है जनाब से, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम में आपस में रवाबत अच्छे हों और उनके ताल्लुकात वो पहले जैसे हों, पार्टीशन से पहले
जैसे। एक्चुअली जफर भाई, मेरे मन की बात छीन ली, मेरे दिल की बात जो है यही है, मैं एक फिल्म पे काम जरूर कर रहा हूँ इस तरह की, इसलिए कि देखिए अभी एक फिल्म जो आई हमारे सलमान भाई की,
बजरंगी
भाईजान, वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, इसलिए कि वो फिल्म जो है वो अपने वो प्यार फैलाती है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को कुछ नफरत हो, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम जो है आपस में मुझे लगता है कि बहुत प्यार है। जब भी पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आते हैं वो हम इतना उनको प्यार देते हैं, और जब जब मैंने ये कहानी यहाँ जो लोगों से सुनी है कि जब लोग हमारे जाते हैं तो जो प्यार मिलता है, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस वो छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि मैं एक फिल्म अभी एक लिख रहा हूँ इस तरह की, और अल्लाह ने चाहा अगर फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई तो मैं जरूर बनाना चाहूंगा, इसलिए कि मुझे बेसिकली फिल्मों जो भी मैंने बनाई उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की है कि आज की दुनिया में नफरत की नहीं, लोगों को प्यार की जरूरत है, और प्यार जो है वो ही बांटना चाहिए, और हम लोग जो हैं ये कलाकार हैं, फनकार हैं और राइटर्स हैं, तो ये काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
अच्छा, बहुत आप ही लोगों की जनरेशन के जो डायरेक्टर और एक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है ये काम आप ही लोग कर सकते हैं, और ये मैं देखती हूँ पाकिस्तान से भी जब लोग आते हैं उनके यही जज्बात और ख्वाहिश आते हैं। मैं आपकी एक फ़िल्म के बारे में, बड़ी मुझे वो एक जैसे इंट्रीगिंग सी स्टोरी भी थी, मुख्तलिफ थी बिल्कुल, आंखें जो फिल्म थी, तो उसकी कहानी भी आपने लिखी थी?
जी कहानी भी मैंने लिखी थी, स्क्रीन पे भी मैंने लिखा था एंड डायलॉग्स भी मैंने लिखे थे।
अच्छा,
और बड़ी मशहूर फिल्म थी ये 93 में रिलीज हुई।
बहुत खूबसूरत। मैं पहले एक हम झलक सुनते हैं आपकी फिल्म की और उसके बाद उस पर बात करते हैं।
जी,
आंखें, फिल्म आंखें में अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, तो मुझे ये भी
अच्छा, ये अमिताभ बच्चन साहब वाली जो फिल्म है ये मैं दोबारा, ये जो अमिताभ बच्चन साहब वाली फिल्म जो आंखें, इसका जो सीक्वल है ये मैं बना रहा हूँ। मैंने जो है अमिताभ बच्चन साहब वाली जो फिल्म थी वो नहीं, मैंने जो गोविंदा चंकी पांडे वो आंखें लिखी थी।
अच्छा,
ये
अच्छा।
आंखें मैंने नहीं लिखी, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, जो सेकेंड आंखें हम बना रहे हैं।
अच्छा, तो चलिए ये तो आपने अच्छी मेरी गलतफहमी दूर की, क्योंकि मैंने दोनों ही देखी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने इसमें से कौन सी बनाई है, क्योंकि आमतौर से
पुरानी फिल्म।
अच्छा, तो वैसे आपने अब तक जितनी कहानियां लिखी, आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है फिल्मों की?
मैं अगर देखिए आपको कहूंगा, पता नहीं आपको कैसे लगेगा, मैं ईमानदारी से कहूँ जो मैं अपने दिल से महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि काफी फिल्में ऐसी हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब है, जिसको आप कह सकते हैं कि नो एंट्री जो है वो मुझे बहुत पसंद है फिल्म, इसलिए कि उसमें एक अजीब तरह की कॉमेडी थी। फिर मुझे प्यार तो होना ही था जो फिल्म थी, वो रोमांटिक लव, रोमांटिक लव, रोमांटिक लव, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये वेलकम जो है, दोनों फिल्में ये बड़ी पसंद है। और एक फिल्म मैंने बनाई थी सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी, तो मैंने सारे जॉनर्स पे काम किया है, तो ये 4-5 फिल्में मेरे बहुत ही दिल के नजदीक है। लेकिन मुझे हमेशा से पता नहीं, अभी भी ये लगता है कि मेरा जो बेस्ट काम है वो अभी तक मैंने किया नहीं है, वो इंशाल्लाह अभी मैं करूंगा।
मुझे पूरा यकीन है कि आप हमेशा ये कहेंगे कि आपने अपना बेस्ट काम नहीं किया, और यही चीज जो है आपकी फिल्मों को बेहतर से बेहतर बनाती रहेगी, क्योंकि एक अच्छा जो आर्टिस्ट होता है मुतमईन नहीं होता। चलिए एक झलक सुनते हैं आपकी फिल्म रेडी से, और ये भी थोड़ा सा आपको है ह्यूमर का शौक, मैंने देखा ही, सुनते हैं।
ओ हेलो, आप सीटी क्यों मार रहे हो? मैं तो पहले से पटा पटाया हूँ।
पटाई की पैदाश है।
ये कौन है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं?
नहीं नहीं, दूर का दोस्त है।
दूर का दोस्त,
जैसे कि दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वैसे ही।
अच्छा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी दूर की नजर कमजोर है।
तो फिर चले कमजोर आदमी।
ओ हेलो, ओए तेरे जैसे बंदे को ना मैं ड्राइवर रखता हूँ।
अच्छा, तो फिर दो चाबी, चलो।
चाबी लगी हुई है, रख लिया ड्राइवर। कम ऑन डार्लिंग, पीछे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ भाई, पैर बचा के।
तो ये सलमान साहब के साथ फिल्म है आपकी, ये आपकी ताज़ा तरीन फिल्म यही है?
जी हाँ, आखिरी सलमान के साथ जो है नो एंट्री के बाद यही फिल्म बनाई थी। दोनों फिल्म बेहद कामयाब रही, लोगों ने बहुत पसंद की, एंड सलमान भाई के साथ काम करने का अपना ही एक मज़ा है। मैं तो उनको ये कहूँगा कि सलमान भाई का नाम जो है वो नाचे दिल खान, अगर आप पर दिल है तो वो सब कुछ करेंगे, एंड बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का, एंड ग्रेट एक्टर। मुझे बिकॉज कुछ एक सीन कभी कभी लिखने को ये भी लगते हैं कि यार ये शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे, बट जिस तरह ये अपने सलमान भाई करते हैं वो ऐसा लगता है कि इतना नेचुरल तरीके से वो कॉमेडी करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग जो है वो लाजवाब है।
मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ना, आप जिस तरह लिखते हैं ना, ये कुछ उनकी शख्सियत का रिफ्लेक्शन भी है, क्योंकि मैं जब उनको टेलीविज़न के प्रोग्रामों में देखती हूँ, स्टेज शोज़ वगैरह करते हुए, तो मैंने देखा है कि वो उनमें भी एक मिजाहिया बातें करने का और फ़िक्रे लगाने का और अपना खुद अपना मजाक उड़ाने का, जो एक बहुत बड़ी खूबी है उनमें, ये बात है कि वो करते हैं। तो सलमान खान के लिए हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि वो भी एक बहुत दर्दमंद आदमी है, और उसमें एक मुझे थोड़ी सी उसकी तस्दीक हुई जहांज़ेब से भी, जहांज़ेब उनसे भी बहुत मिलना चाहते थे, तो बड़ी मोहब्बत से उनसे मिले। तो ये आम उनका रवैया यही है अपने जो स्टाफ के लोग होते हैं?
नहीं, बेसिकली आई थिंक ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, दिल से बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान है। आप देखिए कि आज भी इनके चेहरे पे वो मासूमियत है जो आप काफी यंग बच्चे जो हैं उनके चेहरे पे नहीं देख पाएंगे, जो इस एज में भी आज सलमान भाई के चेहरे पे जो मासूमियत है वो तभी हो सकती है जब दिल के बहुत अच्छे इंसान हो।
नहीं, मैं यही बात कह रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लोग थोड़े से जरूरतमंद होते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या उनसे उम्र में छोटे होते हैं, तो वो उनको बहुत हौसला अफजाई करते हैं उनकी।
जी बिल्कुल, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि वरना लोग जो हैं यहाँ पे इस तरह यंगस्टर्स से मिलते हैं जैसे एक बहुत बड़ा कंपटीशन सामने आ रहा है, बट मैंने देखा है कि यंग बच्चों से वो इतना प्यार करते हैं, उनको एक सलाहें देते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस जो है वो उनको शेयर करते हैं, एंड ये बहुत ही बड़ी बात है मुझे लगता है। तो उनको अपने आप पर, आप ये भी देखिए कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो भी अपने जहाँ पर उनको ये लगता था कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है तो वो ये कहते थे कि सर ये मेरे चार दोस्त हैं इनकी तस्वीरें देख लीजिए इनको काम दे दीजिए।
अच्छा,
तो ये बहुत बड़ी बात है,
बहुत बड़ी बात है। तो खुद आपके भी दरवाजे पे लाइन तो लगी रहती होगी, इतना बॉम्बे में तो हर आदमी मुझे लगता है फिल्म में जाने का शौकीन है, तो किस तरह डील करते हैं आप लोगों के इस हुजूम से?
मैं आपको बताऊं कि जो है अपना मेरे जो ये फोन है वो लोग, मेरे असिस्टेंट, मेरे सारे लोग ये कहते हैं कि आप सबका फोन अटेंड करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने खुद ने भी बहुत लोगों को फोन किया और लोगों ने फोन नहीं उठाए तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती थी, तो मैं जिन जिन से मिलना जरूरी समझता हूँ उनसे मिलता हूँ और मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, तो मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही लोगों से मिलता हूँ और मेरे से जो हो सो चाहे वो सलाह के रूप में हो चाहे और किसी रूप में हो जो मदद कर सकता हूँ वो मुझे लगता है मेरा फर्ज है, इसलिए कि आज अल्लाह ने जिस जगह मुझे पहुंचाया है मुझे लगता है कि वो सिर्फ अगर मैं अपने बारे में सोचता रहूं नहीं है, मुझे इतनी जगह अगर ऊपर वाले ने पहुंचाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने से जो कम है जिनको जरूरत उनके साथ चाहे किसी भी सूरत में उनकी जरूरत को अगर मैं पूरा कर सकूँ तो आई बी देयर।
अच्छा, बहुत मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा हुआ था जब मैंने आपको कॉल की थी, क्योंकि दरमियान में कोई सेक्रेटरी वगैरह नहीं आया तो वैसे तो मैंने अंदाज़ा किया कि आप बराह रास्त लोगों से बात करते हैं और उनसे मिलते हैं, और जहाँ जेब के पास ज़ाहिर है वो एक ऐसे ही आम बच्चा था जिसके पास आपका नंबर था। तो चलिए एक हम थोड़ा सा सुनते हैं आप ही की फिल्म की झलक और उसके बाद और बातें करेंगे। ये फिल्म जो है ये भी बड़ी एक मुतनव्वो फिल्म थी और ख़ास तौर पे अजय देवगन का जो कैरेक्टर था, तो ज़ाहिर है इसमें हम उनका कमाल तो है ही, लेकिन कुछ डायरेक्टर का भी कमाल है जो कुछ हमें नज़र आया स्क्रीन पर, तो क्या तजर्बा है आपका उस फिल्म के लिए?
ये फिल्म मेरे लिए बड़ी खास थी इसलिए कि इस जॉनर में मैंने कोई फिल्म ही भी नहीं थी और मैं ये डायरेक्ट करने जा रहा था सस्पेंस थ्रिलर, एंड अजय देवगन ने इससे पहले कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया था, हालांकि उनके दूसरी बहुत बड़ी फिल्मों में ऑफर भी आए थे, डर भी फिल्म जो है ऑफर हुई थी पहले अजय देवगन को, तो मेरे लिए ये था कि मैं अजय से ये करवाना चाहता था, अजय से एक बहुत ही खास रिश्ता है इसलिए ये पहली फिल्म उन्होंने मेरी की तो वो एक अलग ही उनके लिए मेरा प्यार मोहब्बत है, तो ये फिल्म मुझे पता था कि ये जो कैरेक्टर है ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का कि एक जगह ये एक संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है तरंग, और दूसरी तरफ ये किलर है रंजीत, ये किरदार जो है अजय बहुत खूबसूरती से करेंगे और उन्होंने इतना अच्छा काम भी किया, तो ये फिल्म जब मैंने उनको सुनाई उनको बहुत अच्छा लगा और ये पहली फिल्म थी जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर अजय देवगन ने किया था, और ये फिल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आई और मेरे लिए इसलिए खास थी कि इस जॉनर में मैंने कभी काम नहीं किया था और عباس مستان جو ہیں وہ سسپنس تھرلر بناتے ہیں, میرے بہت اچھے عزیز دوست تھے, انہوں نے جب یہ فلم دیکھی تو انہوں نے اتنی تعریف کی, اتنی تعریف کی, تو وہ ایک بڑی بات تھی کہ جن لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح کی فلمیں بنائی ہے ان کو بھی بے حد فلم یہ پسند آئی تھی.
اچھا نہیں, یہ فلم تو واقعی اس قابل ہے کہ پسند کیا جائے دونوں ہر طرح سے, یعنی اداکاری کے لحاظ سے بھی اور ڈائریکشن کے لحاظ سے بھی. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھا ہے ہمارے حیات راہی نے فیس بک پر کہ خود آپ کس ڈائریکٹر سے متاثر ہیں؟
میں راج صاحب, ہمارے جو راج کپور صاحب ہیں وہ, اور کے آصف صاحب. کے آصف صاحب کی جو فلم ہے مغل اعظم, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی بار دیکھی ہوگی, شاید 300-400 بار. اور محبوب خان صاحب, بیمل رائے, یہ چاروں لوگ جو ہیں ان کے کام کا میں ہمیشہ سے بہت ہی مطلب وہ رہا ہوں کہ بس ان کے کام کو میں دیکھتا ہوں اور مطلب میں جسے کہتے ہیں کہ ایک نشے میں جھوم سا جاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت ان لوگوں نے کام کیا ہے. تو میں راج صاحب اور آصف صاحب, محبوب صاحب اور بیمل رائے, یہ میرے من پسند یہ ڈائریکٹرس ہیں.
اچھا یہ تو حیات رائی کا سوال تھا, اور خضر حیات نے محض آپ کو کمپلیمنٹ پیش کیا ہے گریٹ پرسن کہہ کے, تو
جی تھینک یو سو مچ,
بڑی محبت سے. اچھا اس طرح کے کمنٹس بہت سے ہمارے سننے والوں نے لکھے ہیں, کیونکہ آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں تو میں کچھ چیزیں بیچ میں نکالتی جا رہی ہوں. اب یہ مجھے بتائیے کہ جو سیکول آپ بناتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی جڑواں ہے, یعنی ٹوئنز ہیں آپ کے؟
نہیں 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 نہیں, میں نے بہت ساری فلمیں جو ہے وہ جڑوے پہ مطلب مجھے لگتا ہے آٹھ میں لکھی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے فلم لائن میں انڈیا میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ڈبل رول کی فلم ہے تو وہ شاید کسی اور نے لکھی ہے یا انیس نے لکھی ہے, انیس نے ڈائریکٹ کی ہے. میں نے کافی آٹھ دس فلمیں اس طرح کی بنائی جڑوا.
ہاں, اور اس میں جو کردار ہیں وہ بھی, تو میں نے کہا شاید مطلب ہوتا ہے نا اپنے گھر سے کچھ آدمی کو انسپریشن ملتا ہے, میں نے کہا شاید آپ کے بچوں میں کوئی جڑواں بچے ہیں. اچھا تو بچوں کی بات ہی آ گئی, تھوڑا سا بچوں کے بارے میں بات کریں اور آپ کی بیگم صاحبہ کے بارے میں.
جی میری جو وائف ہے ان کا نام ہے فاطمہ, میری جو بیٹی ہیں وہ سب سے بڑی ہیں ثنا, اور اس سے چھوٹی بیٹی ہیں صبا, اور اس کے بعد مجھے ایک بیٹا ہے فیضان, اور اس سے چھوٹی بیٹی ہے سارا.
اچھا,
تو میری جو بیٹی ہے بڑی والی ثنا ماشاء اللہ وہ 24-25 سال کی ہیں اینڈ گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہیں.
صبا
جو ہے چھوٹی, اس کی شادی ہو گئی ہے. فیضان جو ہے ابھی کالج میں ہے, ہی از انٹرسٹڈ ان فلم میکنگ, وہ رائٹر ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, تو ابھی اس کو میں اس طرف کچھ کام کرواؤں گا. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ہے 10 سال کی سارا, وہ جو ہے وہ پڑھائی کر رہی ہے ابھی اسکول کے اندر.
تو مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو نہ تو روکا اور نہ مجبور کیا کہ وہ ضرور آپ ہی کی لائن میں آئے, آپ نے ان پہ چھوڑ دیا.
مجھے لگتا ہے کہ ہاں بچوں کو وہ کرنے دینا چاہیے جو اس کا ان کو شوق ہو. آپ ایز اے پیرنٹ ان کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں اور ان کے اس شوق کو پورا کرنے میں آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ من پسندیدہ کام اگر کرتے ہیں تو وہ پھر کام کام نہیں لگتا, پھر وہ مزہ بھی دیتا ہے کام. اور اگر آپ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور کو بناتے کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بوجھ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے اس پہ بہت خوبصورت جو فلم بنی ہے وہ ہے 3 ایڈیٹ, مجھے وہ فلم بہت
اچھی ہے. بالکل, اور یہ سچ ہے, ماں باپ اپنی جو خواہشات ہیں وہ ہمیشہ بچوں پہ پوری کرتے ہیں کہ بچے وہ کریں جو وہ نہیں کر سکے.
ہاں مجھے نہیں لگتا وہ تھوپنا چاہیے.
بالکل. اچھا ہمارے ساتھ کالرز ہیں کچھ, شیر خان کاکڑ بلوچستان سے. جی شیر خان کاکڑ, شیر خان
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
جی شیر خان
ٹھیک ٹھاک ہیں؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ بتائیے کیسے ہیں؟ جی جی وہ بات سن رہے ہیں آپ کی, بزمی صاحب بات سن جی
جی جی بھائی بولیے.
آپ آپ کو پروگرام میں صرف ایک سلام دیتا ہوں اور آپ کو مہمان سے یہ بات کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟
اچھا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
جی میں ایکچولی ہوں اپنا احمد آباد کے آگے, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے موٹا سا, تو میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن میں بچپن میں ہی جو ہے والد صاحب کے ساتھ یہاں آ گیا تھا بامبے میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو جنم استھان ہے وہ ہے گجرات, اور میری جو کرم بھومی ہے وہ بامبے ہے.
لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جو سسرال ہے وہ بھی تو وہیں پر ہے گجرات میں.
جی 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 وہ ہے گجرات ہی ہے, اور وہ اکثر جانا ہوتا ہے, اس لیے کہ वहाँ शादियाँ और वो सब चलती रहती हैं और वहाँ जाना ही होता है, तो मेरी बड़ी जो बहन है वो भी वहीं है, मेरा भाई भी वहीं है, मेरे सारे रिश्तेदार एक्चुअली अभी भी वहीं पर है, तो मेरा आना जाना काफ़ी चलता रहता है।
अच्छा, तो आपकी जो बेगम है फातिमा साहिबा, एक गाँव की गोरी हैं, तो जहाँ से आपके माँ बाप के
जी जी मेरे गांव से ही हैं, और ये मेरी मम्मी और मेरे अब्बा ने पसंद किया था इन्हें मेरे लिए, और ये अरेंज मैरिज थी, तो मुझे लगता है कि मेरे अब्बा और अम्मी जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही मेरे लिए सोचा था, इसलिए ये ईमान मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज मैं जिस जगह भी हूँ जहाँ भी हूँ उसमें उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हाथ है। मुझे उन्होंने घर की उतनी टेंशनें कभी नहीं होने दी, वो वरना शायद मैं इतना काम नहीं कर पाता, एंड बच्चों को जो तरबियत देती है वो मुझे लगता है फादर से ज़्यादा माँ देती है, तो वो जो घर में हैं तो उन्होंने जो तरबियत दी है, तो आज माशाल्लाह बच्चे भी जो है वो बहुत ही सही राह पर है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिकॉज ऑफ फातिमा हुई है, एंड मुझे लगता है मेरे अब्बा और अम्मी ने बहुत सही फैसला किया था। ये
बहुत खूब। अच्छा, पेशावर से वाजिद साहब हमारे साथ हैं। जी वाजिद साहब।
अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं वाजिद हूँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि क्या आप पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, और अगर देखते हैं तो आपको पाकिस्तानी फिल्मों से हीरो हीरोइन कौन से पसंद है, और डायरेक्टर को ही अगर आपको पसंद हो तो सवाल से बताइए।
बहुत अच्छा सवाल है, बताइए।
जी जी जी, मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं पाकिस्तान की, और मैंने काफ़ी सीरियल्स वगैरह भी देखे, मुझे सीरियल्स बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द बजट शायद जो वो कहना चाहते हैं वो उस बड़े लेवल पर नहीं कह पाते, लेकिन मुझे राइटर्स जो हैं वहाँ के बहुत मुतासर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टीशन हुआ तो सारे राइटर्स वहीं चले गए, बहुत कम यहाँ रह गए। हाँ। तो मैं वाकई मतलब वहाँ की जो राइटिंग है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, खासकर जो डायलॉग्स लिखते हैं वो इतने अच्छे होते हैं। आजकल हमारे यहाँ जी पर जो एक प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी, वो भी हमारे घर में इतना शौक से लोग देखते हैं, तो सारे आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही कमाल काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरत थ्रिलर है बना देख रहे हैं हम, और इतने खूबसूरत डायलॉग, और डायलॉग के खूबसूरती की वजह भी ये है कि उर्दू जबान है, और उर्दू जो जबान है उसमें ही इतनी मिठास है और इतना खूबसूरत लहजा है वो, कि वो आधे तो उस जबान की वजह से ही डायलॉग्स अच्छे लगने लग जाते हैं।
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जैसे कि एक पॉलिटिकल कोशिश थी, पाकिस्तान में भी थी और इंडिया में भी थी, कि ज़बान जो है उसकी सादगी, जैसे वहाँ पे संस्कृत को बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया गया, मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ जो किसी की समझ में नहीं आते, इसी तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदी के लफ्ज़ कम करके और अरबी और फारसी की तरकीबें ज़्यादा ले आए, तो लेकिन मुझे लगता है कि जो परफेक्ट नज़र आती है ज़बान मुझे वो फिल्मों में नज़र आती है, एक आम आदमी जो ज़बान बोलता है।
बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर वो उर्दू की पूरी उर्दू जबान भी है और हिंदी का भी, जैसे मैंने आपको मेरे वाले साहब का शेर सुनाया, वो आप देखिए कि उसमें उर्दू और हिंदी दोनों मिलती है, कि प्यार समझे ना कोई प्यार का बंधन समझे, नाजो अंदाज ही को रिस्क का साधन समझे, तो मुझे लगता है वो जबान जो है हमारी फिल्मों की वो एक बड़ी खूबसूरत जबान है, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है और कुछ अंग्रेजी भी है, तो वो एक ऐसी जबान ही जो हर इंसान चाहे वो कहीं को भी बिलोंग करता हो वो समझ सके।
अच्छा, एक और हमारे कॉलर हैं मुरीद खान दाऊद खैर मियांवाली से। जी मुरीद खान साहब।
जी
वालेकुम सलाम भाई,
अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं इनसे अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फनकार मिलकर कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाते जो पार्टीशन के वक्त जो ज्यादती हुई हैं या गलती हुई हैं या लोगों के साथ जुल्म हुए हैं उनका अजाला हो जाए, ताकि वो जो तलखियाँ हैं ख़त्म हो जाएं। हमारी आवाम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हुक्मरान कोई ना कोई बीच में पंगा खड़ा कर देते हैं, तो मैं इनसे नहायत अदर से गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसी फिल्म मिलकर बनाएं ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आवाम के साथ प्यार मोहब्बत और बढ़ जाए।
जी
क्या बात है, वाह वाह, इतना नेक ख्याल है आपका, और आपको ईमानदार से बताऊं कि मुझे भी अक्सर यही ख्याल आता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बहुत साल पहले है, अभी जैसे देखिए कि रशिया के साथ भी मिलकर कुछ लोगों ने यहाँ पे फिल्में बनाई थी, और काफी बाहर बाहर के लोगों से मिलकर जो है लोग फिल्में बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा भी हो कि भाई हिंदुस्तानी लोग और पाकिस्तान के सारे लोग मिलकर भी कुछ अच्छी फिल्में बनाए, और मुझे लगता है वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी। मुझे लगता है कि ये ایسا ہو تو دونوں ہی ملکوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس لیے کہ جو پرانے گھاؤ ہے اور پرانی چیزیں ہیں اس کو بھول کر ہم کو ایک نیا آغاز کرنا چاہیے, ایک نئی شروعات کرنی چاہیے, اور وہ جو پیار محبت ہے وہ اسی طرح رہنا چاہیے کہ ایک جو پڑوسی ہم ملک ہے, ہم ایک دوسرے کے اتنے نزدیک بھی ہیں لیکن اس کے بیچ میں جو ایک دیوار ہے یا ایک جو درار ہے مجھے لگتا ہے وہ ختم کرنے جو ذمہ داری ہے یا وہ ہم لوگوں پر بھی بنتی ہے اور وہاں بھی بنتی ہے, اور مل کر اگر کام کریں تو یہ اس جو راستہ ہے اس کو اور ہم نزدیک پائیں گے. مطلب
اچھا بھکر سے ہمارے ساتھ ہیں علی حسن صاحب. جی علی حسن.
جی
علی حسن صاحب.
السلام علیکم مہمان بھائی.
وعلیکم السلام. جی
ایک سوال ہے, ایسا کام جو آپ ابھی تک نہ کر پائے ہوں اور دل میں خلش ہو.
اچھا یہ آپ نے کہا تو تھا, انہوں نے بات تو بڑے پتے کی پوچھی ہے کہ وہ کام ہے کون سا جس کے کرنے کی ابھی تک تمنا ہے.
دیکھیے میں بولتا ہوں کہ جو فلمیں میں بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں, ایک فلم جو ہے میرے بہت دل کے نزدیک ہے وہ میں لکھ رہا ہوں پچھلے سمجھ لیجیے 5-6 سالوں سے, اور میں نے جب بھی فلمیں لکھی ہیں وہ کبھی 1 مہینے میں لکھی ہے, کبھی 2 مہینے میں لکھی ہے, کبھی زیادہ ہو گیا تو 6 مہینے میں لکھ دی, 4 مہینے میں لکھ دی. یہ وہ فلم ہے جو میں پچھلے 5-1 سال سے سوچ رہا ہوں کہ یہ میں بناؤں گا, تو وہ میری ایک مطلب میری ایک بہت ہی تمنا ہے کہ اللہ مجھے ایسی مدد کرے کہ میں وہ فلم بنا سکوں. اس لیے کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ایک کاروباری حساب سے وہ فلم بنا سکتے ہیں. آج فلمیں بناتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم 1 روپے میں بنا رہے ہیں, 1 روپے 10 پیسے مل جائے گا. وہ شاید اس طرح کی فلم ہے کہ پتہ نہیں اس میں کتنے لاکھوں کتنے کروڑ روپے لگ جائیں اور شاید پیسہ اتنا واپس آئے نہیں آئے, لیکن وہ ایک الگ کام ہے. تو وہ ایک فلم میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ میں لکھ رہا ہوں اور میں اس کے لیے کوشش کروں گا کہ وہ میں اپنی ایک فلم میں بنا دوں, تاکہ مجھے ایک وہ رہے گا سکون رہے گا کہ بھائی میں نے جتنا بھی کام کیا لیکن یہ ایک میں ہمیشہ سے بنانا چاہتا تھا.
میرا خیال ہے کہ ریٹرن آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ اس کی ایک مثال بجرنگی بھائی جان ہے. ایسی فلمیں نا لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ہیں گوجرانوالہ سے رانا تارے. جی رانا صاحب ان کا فون ڈراپ ہو گیا. راولا کوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں سید
جی
ادیب حسن. جی ادیب صاحب.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
وعلیکم السلام ادیب صاحب.
ہاں بہت خوشی ہوئی ہے, میں ابھی ریڈیو کھولا تو آپ کا پروگرام اکثر سنتا ہی رہتا ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے. اور میں نے لتا جی پہ, شمشاد بیگم پہ, محمد رفیع پہ اور مہدی حسن پہ بہت کالم لکھے ہیں. ہلو
جی جی جی
جی
تو آپ اچھا آپ اخباروں میں لکھتے ہیں آپ؟
ہاں جی جی کالم لکھے ان پہ اور میں خود بھی گاتا ہوں.
اچھا
میں نے شمشاد دیوم کے اور لتا جی کے اور رفیع صاحب کے بہت گانے گائے, رفیع صاحب سے میں ملاقات بھی کی 1970.
لیکن آپ کو کس کو ان کی فلم کا گانا آتا ہے؟ ہمارے انیس صاحب کی فلم کا, انیس بزمی کی کسی فلم کا
نہیں. کون سا کون سی فلم
آپ اب بتائیے بزمی صاحب کون سا گانا سنیں گے؟
جی جو ان کو یاد ہو, یا پیار تو ہونا تھا کہ گانے تھے اجنبی مجھ کو اتنا بتا دل میرا کیوں پریشان ہے,
یاد ہے آپ کو؟ یہ تو ذرا مطلب لگ رہا ہے کہ جی
نہیں نہیں یاد ہے لتا جی کا سننا چاہیں تو سنا سکتا ہوں. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی پروگرام جب کبھی بھی آپ دیتی ہیں بہت ہی خوبصورت, آپ لوگ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں, لیکن وہ پرانے لوگ وہ جو زورا بھائی تھی اور ہماری وہ کینن دیوی تھی اور پھر
جی
ہماری جو سرندر کور نریندر کور پانی پاک سمندر دے یاری تے دو دن دی نینے ساری عمراں دے پرانے پرانے پروگرام بھی دے. اور انیس صاحب آپ کی گفتگو اور آپ کا لہجہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے, اور ایسی فلم بنائے میں نے بہت مذاق لکھے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے راستے کھلنے چاہیے, یہ ایک ہی لوگ ہیں.
کیا بات ہے
لوگ ہیں
جی بالکل.
اللہ کہہ رہے
میرا خیال ہے کہ یہی بات کئی لوگ کہہ رہے ہیں اور شاید اب یہ فنکاری ایسا کر سکتے ہیں.
یہی ہاں میں نے یہی محسوس کیا کہ وہاں پر بھی یہی بات ہے ذہن میں, اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ یہاں پر کئی لوگ مجھے کہتے ہیں कि यार इस तरह की एक फिल्म बनाओ जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का प्यार मोहब्बत जो है एक्चुअली जो है वो सामने आया। और मुझे आज आप लोगों से बात करके और वहाँ जितने लोगों से बात हुई यही बात जब सामने आई तो अब मैं और सीरियसली इस बारे में सोचूंगा।
अच्छा, हमारे साथ बलूचिस्तान से एक और कॉलर है, अब्दुल वहाब शिरानी साहब। जी शिरानी साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई।
वालेकुम सलाम।
जी मैं अब्दुल वहाब शिरानी बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ, जिला शिरानी से।
जी
जी
जी, मेहमान से मेहमान गरानी से मेरा यही सवाल है।
जी क्या है सवाल?
यही सवाल है कि ये फिल्म बनाना, ये तसवुरात, ये ख्यालात इकट्ठा करना, ये तो हर एक बंदे का काम नहीं है, खास खास ये तो फितरत की यानी गिफ्ट बाय गॉड अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है।
जी बिल्कुल
जी।
तो इनको
लेकिन मेहमान से
जी
मेहमान से मेरा यही सवाल है कि आप एक ऐसा फिल्म बना दे, एक ऐसा फिल्म तहरीर कर दे कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन में जो चिपकलशी भी खत्म हो जाए और लोगों पर एक ऐसे तसव्वुरात एक ऐसे असर आ जाए कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते। फिल्म तो मैं ये प्री आइडिया थे, बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो काम की फिल्में हैं, कुछ ऐसे फिल्में हैं जो नफरत की, कुछ ऐसे हैं जो मोहब्बत की, लेकिन मेरे यही गुजारिश है कि आप ऐसे फिल्म बना दें।
शिरानी साहब यहाँ पे मैं ये कहूँगी, एक थोड़ी छोटी सी बात मैं ही कहूँगी कि ख़ास तौर पर माँ बाप की हैसियत से हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है, चाहे हम किसी भी मुल्क में रहते हों, चाहे हम अमेरिका में रहते हों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी, हम अपने बच्चों को मोहब्बत करना सिखाएं। हम अपने बच्चों को पुरानी दुश्मनियों की तो हवा भी नहीं लगने दें, उनसे कभी इस बारे में बात ना करें।
तो बहुत अच्छी आपने बात कही है कि वो कहानियां, वो जो घाव, वो जो दर्द है, उसके बजाय हम नई बातें करें। और बिल्कुल सही बात है, और ये हर बार काफी लोगों ने ये कहा और अभी शिरानी साहब ने भी यही कहा, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब वाकई बहुत सीरियसली सोचूंगा कि इस तरह की फिल्म बनाऊं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बीच हल्की फुल्की भी जो एक दीवार है या दरार है वो खत्म हो और प्यार मोहब्बत और बढ़े।
वैसे क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से प्रोग्राम करती हूँ तो मैं इस दीवार को हल्का फुल्का नहीं समझती। सियासी तौर पे तो ये ऐसी दीवार है कि बहुत से लोग सर फोड़ते रहते हैं इससे, खासतौर पर कश्मीर के दोनों हिस्सों में।
मैं कहूंगा कि अगर दीवार अगर आपको बहुत भारी और बहुत ये दरार गहरी लग रही है तो मेरे ख्याल से ये सारे हुक्मरान और ये बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स के, अगर आप यहाँ आकर आम इंसानों से बात करें तो आपको पता लगेगा कि वो भी जो है पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद करते हैं।
मैं तो कई दफा आई हूँ और मेरा बिल्कुल वहाँ के लोगों में ऐसी मोहब्बत मैंने पाई पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, जिस तरह की पाकिस्तान में देखती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर दीवारें बर्लिन के लिए भी तो लोग समझते थे कभी नहीं टूटेगी, सर्द जंग कितनी खौफनाक थी, मगर टूट गई ना एक दिन वो दीवार। अच्छा चलिए, एक इन्होंने भी बात की थी शिरानी साहब ने कि तब्दील करने की ताकत होती है कलम में ना, मैं आपका एक डायलॉग सुनाना चाहती हूँ क्योंकि हमने आपकी ज्यादातर बात की है जो हल्के फुल्के डायलॉग से, लेकिन एक डायलॉग सुनते हैं उसके बाद बात करते हैं। जी लेकिन पहले प्रोमो चाह रहे हैं अरसलान एक सुनाना, प्रोमो हम सुन लेते हैं उसके बाद वो डायलॉग सुन।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करके 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है,
दुनिया ना उलट जाती है।
सर, मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा।
किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की?
गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए।
मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर।
रुको,
तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं।
ए, डिमांड्स, डिमांड क्या है? बता, 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 क्या है?
ये स्पेशलिटी मैसी रहेगी, इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए।
अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी देता हूं।
तुम सब दोगले हो।
मुझे नहीं चाहिए सर।
व्हाई?
मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया। मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा।
तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा।
आप भी कौन से मामूली इंसान हो? स्पेशल ऑपरेशन के हेड
आप ही दो ना सर।
ओ माय गॉड।
तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनीस बज़मी साहब हैं। अनीस साहब, आपका, क्योंकि थोड़ी सी देर को लाइन कट गई थी, तो आपका ये वो डायलॉग था जब वो कहता है कि जो मैं पुलिस अफसर की जगह मुजरिम बनना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा आसानी से सिस्टम को तब्दील कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके अक्सर कहानी में जगह जगह बहुत संजीदा बातें इस तरह आती हैं कि उन्हें एक आम आदमी समझ सके, और यही एक कहानी लिखने वाले का कमाल है कि भारी भरकम तकरीरें नहीं करवाए, बल्कि एक कैरेक्टर जो कि नेगेटिव है जब वो ये बात कहता है तो हमें समझ में आती है कि वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ी अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, और वो भी सिस्टम को तब्दील कर सकता है और शायद ज़्यादा कर सकता है। तो आपने जो भी कैरेक्टर्स लिखे, आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है आबिद बज़मी साहब? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आबिद साहब, मेरा ख्याल है इनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तो दोबारा से फ़ोन कीजिएगा। समीन, अनीस बज़मी साहब हमारे साथ हैं। जी जी, आ रही है
आपको आवाज़? आ रही है
जी, अब आ रही है। जी
जी जी, तो मैंने आंखें फिल्म लिखी थी, तो उस वक्त हमारी फिल्मों में हीरो के नाम होते थे बड़े भारी भरकम, राहुल ओबरॉय और राज खन्ना, इस तरह के नाम होते थे, और मैंने नाम रखा था बुन्नू और मुन्नू। तो वो दोनों कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद थे उस फिल्म में। कादर खान साहब जो थे और सदाशिव, वो कैरेक्टर बहुत अच्छे थे। मुझे नो एंट्री में सलमान भाई का कैरेक्टर बहुत पसंद है, और रेडी में जैसे जो हमारे कमांडेंट थे जो प्यार करते हैं हीरोइन से और फिर वो नौकर बन जाते हैं, वो कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ थे एक दूसरे से और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, तो वो सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है।
अच्छा, आपकी कहानियों में बच्चों के किरदार भी आते हैं कहीं कहीं, और जो बड़े अच्छे लगते हैं, तो चलिए एक बच्चे का किरदार तो नहीं है लेकिन टीचर्स जो उनकी इस्तेदाद है इम्तहान के बारे में, इस तरह के मैंने कई जगह क्लिप्स देखे, तो ये सुनते हैं।
टीचर हूँ अमर चौधरी।
टीचर? चीटर है तू साले, एग्जाम में जीरो देता है।
तुमने जवाब ही गलत लिखा था।
सवाल क्या था? Who is the President of India?
मिसेज प्रतिभा पाटिल।
तूने बताया था कि अब्दुल कलाम है।
ओ, प्रेसिडेंट चेंज हो गया ना?
अबे तो चेंज हो गया, इसमें मेरी गलती है। सिकंदर ने पोरस से कब और कहां लड़ाई की, इसमें मैं क्या करूं? अबे मुझे क्या वहां जाके उनकी कब्र खोदनी है।
मरो मरो, शाबाश शाबाश, सही जा रहे अमर चौधरी। देखा, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पे रखा है, अमर चौधरी।
ए अमर चौधरी।
अच्छा, हमारे ये जो आपके डायलॉग अभी हमने सुने, मैं मोहम्मद आजम सुल्तान ने फेसबुक पे आपके लिखा है, क्या बात है, तो मैं भी कहती हूँ क्या बात है अनीस बज़मी, क्या कहना आपका, एक इंसान की हैसियत से भी, एक फ़नकार की हैसियत से भी। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, आपसे बातें करके। इंशाल्लाह अब आइंदा हफ्ते आपसे दोबारा, आइंदा हफ्ते क्या, इसी हफ्ते जुमेरात को।
नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, और सारे लोगों का, जिन लोगों ने फोन किए, जिन लोगों ने मैसेज दिए, उन सबका शुक्रिया। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है सारे लोगों से बात करो, और आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका। तो सामीन, हमारे प्रोड्यूसर अरसलान शरीफ थे, मैं शहनाज अजीज आपसे इजाज़त चाहूँगी प्रोग्राम ख़त्म करने की। खुदा हाफिज।
खुदा
लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जनवरी में
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔